संप्रदाय में तीन तीन वैष्णव का आज तिरुभाव महामहोत्सव है। उसमें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज तिरुभाव महामहोत्सव है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जज भी हुए राधा रानी नित्य परिकर है रति मंजरी, लेकिन उनका जीवन ऐसे के दिव्य जीवन है, वे हम लोगों को एक साधारण साधक किस रूप में साधन भजन करे, वे एक साधारण वे दिव्य परिकर होते हुए भी एक साधारण साधक रूप में उतर करके हम लोगों को किस तरीका साधन भजन करनी चाहिए, उन्होंने ये सब चीज को शिक्षा दिया है। और उन्होंने यह शिक्षा दिया, अगर सचमुच से किसको भगवत भक्ति में रुचि हो, भगवत भक्ति में रुचि होने पर कैसे स्वाभाविक रूप में जीवन में विषय का प्रति उसको वैराग्य आता है, ये भी उनको जीवन में एक बहुत बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारे गीत गोविंद में कवि जयदेव एक बहुत बढ़िया श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक में कहते हैं, कहते साध्वी माधु की चिंता न भवती सर करे कर तसासी द्राक्षे द्राक्षं दिखे स्वामृतं मृत्मसी क्षीरं नीरं रसस्ते माक्रंद क्रंद कांताधर न तुलाम गच्छ जच्छति भाव चावत सिंगार शुभमिव जयदेव वैद्य वैद्यति वाचा। श्री गीत गोविंद में कवि जयदेव कहते हैं, अगर सचमुच से भगवत भक्ति में इसको अगर रुचि हो जाए, अगर सचमुच से राधा कृष्ण का प्रेम रस को कोई आस्वादन करे तो कहते उसको जीवन में क्या सीखने को मिलता है। कहते हैं साध्वी माध्वी का चिंता न भवती, माध्वी का मतलब होता है मधु सहेज, कहते शहर में जो रस है उसमें जो मिष्टता है, कहते साधी माधी पर चिंता न भवती, कहते कृष्ण भक्ति रस को सामने मधु का जो मिष्टता वो भी उसको सामने फीकी पड़ जाते हैं। साधी माधी पर चिंता न भवती, कहते सरकरे, कहते सरकरा को बहुत अच्छा मिठा कहते हैं, कहते हे सरकरे तुम कर्कशासी, तुम तो कर्कश हो गया हो, तुम तो एकदम तरुआ बन गया हो कृष्ण भक्ति के सामने। और कहते द्राक्ष द्राक्ष थी, कहते हे द्राक्षा रस, कहते द्राक्षा रस एक तरह का अंगूर रस से एक तरह का वो रस बनता है, जिस रस को जगत में बहुत अच्छा रस है। कहते द्राक्षा द्राक्षंती, कहते हे द्राक्ष रस तेरे को अभी कौन देखेगा, अभी तेरे को जगत में कोई नहीं देखेगा। द्राक्षा द्राक्षंती के स्वाम मृतम मृतम असी, जगत को अमृत को बहुत बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, जगत में सब लोग कहते हैं अमृत जैसे चीज है, स्वर्ग में जाओगे तो अमृत पियोगे, लेकिन कहते हैं अमृत तुम मृतम असी, कहते हैं अमृत तू तो मर गया, तू तेरे को कौन पूछने वाले जगत में, तेरे को अभी कोई पूछने वाले नहीं। कहते क्रांता क्रांता धर, इसी जगत में सर्वश्रेष्ठ सु स्त्री संघ को मानते हैं, और स्त्री का आधा मृत को पान को ही जगत में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कहते क्रांता क्रांता धर, कहते हे कांत का जो अधरा मृत, कहते तू तो कृष्ण भक्ति रस को सामने अगर किसको राधा कृष्ण रस प्रेमामृत अगर आस्वाद विषय हो तुमको जगत में कौन पूछेगा। रघुनाथ ससुर सब जैसे उन्होंने शादी कर दिया उस पर देखे ही नहीं, इसलिए क्रांता क्रांत धर ना तुला भाव गच्छति, इसलिए कि जावत श्रृंगार सार शुभम एव जयदेव से वैदग्ध वाचा, इसलिए कहते जयदेव का जो सुंदर सुंदर पद्यावली है, जो रसात्मक का पद्यावली है, अगर जीवन में कोई एक बूंद अगर उसका आस्वादन का विषय हो जगत में सारे रस उसको सामने फीकी पड़ जाती है, जो कवि जयदेव कहते हैं। इसलिए इतने सारे लक्षण है, कहते हमारे ये रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में ये सब एक एक करके सब चीज दिखता है कि सचमुच से इतने सारे वैभव के, हाँ वैभव रहते हुए भी कैसे उन्होंने सारे वैभव को दूसरा करके कैसे भगवान का भजन किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी उनका जो साधारण जीवन है, सर्वप्रथम वो शिक्षा देते हैं भक्ति स्तु भगवत भक्त सांगे न परिजाय। अगर जीव को कभी भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है, जब वो नित्य परिकर है, लेकिन उनके जीवन में सर्वप्रथम भैसा ठाकुर और अद्वैत आचार्य का हमको संग प्राप्त होता है। साधारण रूप में दिखाते हैं, यद्यपि उनको तुलना करने पर रघुनाथ दास गोस्वामी को उनका कोई स्थिति तो अद्भुत स्थिति है, लेकिन तब भी साधारण साधक के लिए दिखाते हैं कि तो उनका संगत से मानो उनको भगवत चरण में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में उनको अनुराग होता है। अभी भगवत चरण में अनुराग होने पर स्वतः भक्ति वैसा विरक्ति भगवत भक्ति में वैसा का अनुभूत होने पर जो विरक्ति है वो तृतीय तृतीय स्टेज में भक्ति परेशान अनुभव और विरक्ति। अगर विश्वनाथ चतुर्थी कहते हैं कहते हम कोई भजन कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं कहते लेकिन विषय का प्रति संसार का प्रति हमारा वैराग्य नहीं हो रहा है तो समझने चाहिए ताल में कुछ काला है, भजन हमारे सही सही नहीं हो रहे हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में हम देखते हैं उनको भगवत भजन में श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि चरण का वर्णन जब उनको प्रेम प्रकट होता है उनको संसार का सारे विषय भय वैभव उनके सामने झुकी पड़ गया, सबके सब तुच्छ मानते हैं और घर बार छोड़ छाड़ करके महाप्रभु के चरण में वो बार बार आते हैं, उनको पकड़ पकड़ करके और बार बार उनको पिटाने चले जाते हैं। तो महाप्रभु उनको कुछ शिक्षा देते हैं, देखो स्थिर भैया घरे जाओ नाको बातुर क्रमे क्रमे पाएगी भगवत विष्णु अंतर निष्ठा कर लो तो अच्छे व्यवहार अच्छी रात कृष्ण समाज कर। कभी कभी हम लोग पागलपन करते हैं, हाँ जैसे बताए गुप्ता भाई, कभी कभी हमारा अंदर में कभी साधन के जीवन में साधन भजन इतने उत्साह दिखता है, पहले साधन भजन में मान समझे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो उत्साह नहीं कभी कभी धर्म करवा विश्व संग्रह नियम तब करते करते कहाँ से कहाँ उतर आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो रघुनाथ स्थिर भैया घर जा कहा बात हो घर में जा करके युक्त प्रयाग पूर्वक भजन वैराग्य नहीं युक्त प्रयाग पूर्वक भगवत भजन करो। भगवत भजन जब सही सही करेंगे जब भगवत चरण में हमारे अनुराग धीरे धीरे बढ़ेगा हाँ उसी समय कैसे ये संसार तुम्हारा छूटेगा, कैसे तुम भगवत चरण में आओगे छल कृष्ण तुम्हारा जोगा उसी समय किस रूप में भगवत भजन करने के लिए आओगे तब उसको स्वयं भगवान हृदय से अंतर्जामी रूप में तुमको उस शब्द प्रदान करेंगे। इसलिए घर मिलता अभी कहते लोकवाच्य व्यवहार अंतर निष्ठा है लोकवाच्य व्यवहार
वाच्य लोग
वाच्य लोग व्यवहार लेकिन अंतर में निष्ठा को रखो। लेकिन जो लौकिक जो रीति है हाँ संसार में कैसे रहनी चाहिए वो करनी चाहिए लेकिन केवल ऊपर से दिखाने के लिए केवल ऊपर को प्रेम करो। जैसे श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वो जो श्लोक लिखते हैं बालागिरी गृह कर्म जो इसलिए ऊपर से केवल करो लेकिन हृदय से संपूर्ण रूप में तुम्हारा प्रेम प्यार को गुरु के जितना और महाप्रभु का चरण में रखो। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जा करके अभी महाप्रभु का उपदेश का अनुरूप कैसे घर में कैसे क्रिया को करते हैं है उनको कोशिश करते हैं एक काम करो जगत में सबसे जगत में बंधन का कारण होता है स्त्री है तो इसको सुंदर एक स्त्री को साथ में शादी करा दो। स्त्री अक्षरी समय अक्षर जैसे एक स्त्री को साथ में उसको शादी करा दिया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी हाँ कृष्ण रस भक्ति अगर किसको आस्वादन का विषय हो लेकिन वो स्त्री को तरफ में देखते हैं मतलब नहीं है हाँ अरे कहते उसको हाथ प्यार बात तक रखो ये बारंबार आ जाता है। कहते जगत में विशेषकर दो वस्तु बहुत ही बंधन का कारण होता है एक मतलब पैसा है और दूसरा स्त्री है। कहते इसको पास में इंद्र के बराबर ऐश्वर्य है और स्त्री कहते स्त्री अक्षर्य से स्त्री है कहते ये चीज सबसे बड़ा बंधन है। रघुनाथ दास गोस्वामी का पिता कहते तुम पागली जिसको
ये सबसे ज्यादा जो बड़ा सुंदर है, अगर ये उसको बांध नहीं पाया तो कभी चैतन्य बांधु सारे सारे, अगर महाप्रभु का प्रेम में कोई एक बार डुबकी लगाते हैं तो उसको कौन बांध के रख सकता है। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में फिर बहाना बना करके उन्होंने एक महीना रास्ता को उन्होंने केवल 12 दिनों में उसको अतिक्रम करते हैं। दिनों में केवल 12 दिनों में केवल 3 दिन इसी तरह से कुछ खा करके जगन्नाथपुर में पहुंचते हैं। जो जगन्नाथपुर में पहुंचे महापुर का रघुनाथ भगवान के दरबार में इसे कृपा है, क्योंकि ये जो विषय विष्ठा है ये विषय एक का विष्ठा है, भगवान का कृपा नहीं होने पर ये विषय विष्ठा से कोई नहीं निकल सकते हैं। भगवान की विशेष पर कृपा है क्योंकि तुम संसार छोड़ कर करके तुम भजन करने के लिए आ गए हो, तब उनको स्वरूप दामोदर को हाथ में दे देते हैं, इसलिए उनका एक नाम है स्वरूप रघु। हाँ, स्वरूप दामोदर कौन है? कहते ललिता है और ये रति मंजरी है। अभी उनको हाँ साथ उनको उपदेश अनुरूप अभी ये साधन भजन करते रघुनाथ गोस्वामी महाप्रभु कहते प्रभु मैं चाहता हूँ आपका मुखार चिन्ह से ही डायरेक्ट कुछ उपदेश श्रवण करना चाहता हूँ, इसलिए हरे कृष्ण आपका मुखार चिन्ह से ही कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने अपना मुखार चिन्ह से उन्होंने 4 लाइन उन्होंने उनको उपदेश दिया है। तो 4 लाइन नहीं मानो, जितने सारे शास्त्र है सारे शास्त्र का निचोड़ उन्होंने केवल 4 लाइन में उन्होंने बता दिया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हाँ मरकट बैरा के नाकर लोग दिखाइया जथा जुग विश्व गुंज अनाथ करिया ग्राम कथा ना कहिबे ग्राम कथा ना सुनबे अमृत राधा कृष्ण सेवा मानस गरीबे। रघुनाथ ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य कथा ना सुनबे, क्योंकि जो ग्राम्य कथा बोलना नहीं और ग्राम्य कथा सुनना नहीं, क्योंकि ये सबसे हमारा बड़ा प्यार है। अगर हमको कोई ग्राम्य कथा सुनने को मिले हमारा कान खराब हो जाता है। अगर हरिचर्चा कहीं हो भगवत कथा आपको कहो भक्तिमय ठाकुर कहते हैं झूले झूले कलाश वाले संबंधी भी आ जाती है, लेकिन अगर कोई इधर उधर का चर्चा हो ग्राम्य चर्चा हो भले ही आप यहाँ पर है लेकिन वहां पर कोई बैठ करके कोई ग्राम्य चर्चा करते हैं लेकिन वो ऐसे है दूर में रहने पर भी पता चल जाएगा वहां पर कुछ हो रहा है। हम क्या करेंगे अगर ये हरी कथा होता है छोड़ करके जहाँ ग्राम्य कथा होता है वही चले जाएंगे, लेकिन जहाँ हरी कथा होता है वहां जाएगी नहीं। ये हमारा एक बहुत बड़ा बीमारी है। हाँ, इसलिए कहते ग्राम्य कथा ना बोली वे ग्राम्य कथा ना सुनी वे, कहते सुनना भी नहीं और बोलना भी नहीं, क्योंकि हम जो सुनते हैं और जो बोलते हैं उसी में ही हमारा आवेश होता है। अगर हम इधर उधर बोलेंगे फिर तो हमारा आवेश ही गंदी तरफ में जाएगा, इसलिए अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से विवर्जना। इसलिए हमको जीवन में भगवत भक्ति का जो अनुकूल है कहते संकल्प मतलब प्रतिज्ञा करना, आज से हम भगवत भजन का जो अनुकूल वस्तु है जीवन में उसको ही ग्रहण करेंगे, जीवन में जो प्रतिकूल वस्तु है हम जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे। और मरकट बैरा के नाटक लोग देखा गया, कहते लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत बड़े साधु है, इसको दिखाने के लिए हमको बंदर जैसे बैराग्य नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमको जथा योग्य हो ना ही पधारो, हमको जितने शरीर के लिए जरूरत है उतना ही ग्रहण करनी चाहिए, हमको ज्यादा ग्रहण करेंगे भोगी बन जाएंगे कम बनेंगे करेंगे तो फिर परमार्थ से चुप्त हो जाएंगे, और जो संसार की जो जितने भी जगत में जितने सारे विषय वस्तु है सब कृष्ण संबंध जान करके सबके सब कृष्ण भजन के कृष्ण सेवा के अनुकूल रूप में जान करके हर वस्तुओं को हमें भगवत सेवा में लगानी चाहिए। और ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस लगे, तो मन मन में राधा कृष्ण की सेवा को मन मन कर महाप्रभु के उपदेश रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी पहले तो उनको पिता का दिया हुआ कुछ वस्तु को लेकर के महाप्रभु निमंत्रण करते थे, लेकिन देखा महाप्रभु उसमें ग्रहण तो करते हैं लेकिन महाप्रभु संतुष्ट नहीं, कहते क्यों? कहते जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने आया है, कहते कम से कम उनका अंदर में यह विश्वास रहना चाहिए, हाँ रक्षति विश्वास गुप्त परमान कथा, भगवान का हम भजन कर रहे हैं, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ बैंक बैलेंस कर देंगे, कहता अभी तो गुरुदेव है, अगर गुरुदेव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा भविष्य तक क्या होगा, इसे अभी से तो कुछ जमा कर रखनी चाहिए, नहीं तो गुरुदेव है खिला रहे पिला रहे, बाद में क्या होगा मटका, इसका मतलब क्या होता है, फिर मतलब है अभी हमारा भजन सही नहीं, हम भगवान के हृदय को उतार देते हैं, भजन का अनुभूति नहीं, इसलिए भजन में कमी हमारा अंदर में, लेकिन जब सचमुच से हम भगवान भजन करेंगे तभी जो रक्षति विश्वास गुप्त वर्णन करता ये भगवान स्वयं प्रदान करेंगे, भले हम कितने विषय वैभव को संग्रह कर ले, लेकिन अगर भजन का शक्ति नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर भजन की शक्ति रहे सारा दुनिया हमारा चरण में आकर लौटेगा, हाँ सारा विश्व वैभव हफ्ते को महाराज को देखिए, महाराज कैसे अकेले सारा विश्व ब्रह्मांड भजन का प्रभाव से कैसे भजन, इसलिए हम लोगों को गुरु वैष्णव का आदर्श को ग्रहण करनी चाहिए, हाँ इसलिए कभी कभी हम विशेष संग्रह करने के लिए चाहते हैं, लेकिन सचमुच से गुरु वैष्णव से गुरुदेव जो वस्तु देना चाहते हैं तो क्या देना चाहते हैं, गुरु प्रेम देना चाहते हैं, भगवत भजन का तीव्रता देना चाहते हैं, भगवत अनुभूति देना चाहते हैं, अगर सचमुच से गुरु जी से अगर हम वह वस्तु को प्राप्त कर सके फिर तो समझो कोई चिंता नहीं, अगर गुरु जी से अगर वह वस्तु ग्रहण नहीं कर सके केवल ऊपर का विषय वैभव को लेकर के हम मारपीट दंगा और उसमें प्रतिष्ठा पाने के लिए करें, जीवन में कुछ भी होने वाले नहीं, अगर भजन नहीं करोगे तो जगत में कोई पूछने वाले नहीं, अगर हम भजन करेंगे तो भगवत भक्ति करेंगे तो भक्ति भगवान यदि मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, अगर हृदय में भगवत भक्ति अगर प्रकट हो जाए विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा शरण में अपने आप लौटेंगे, लेकिन तब तो हमें भगवत भजन में हमारा विश्वास होने चाहिए, इसलिए महाप्रभु महाराज यह शिक्षा देने के लिए एक शुद्ध वैराग्य के लिए जो आदर्श रूप में होने चाहिए, हम भजन कर रहे हैं पिताजी हमको भेज रहे हैं पैसा, हम पिताजी तो भगवान भजन पर विश्वास किया है, इसलिए महाप्रभु का भावना स्वर्ण छोड़ दिया, फिर उन्होंने बाजार में आनंद बाजार में फिर वहां पर जाकर उन्होंने भिक्षा किया, फिर बाहर भी खड़े होकर भिक्षा किया, महाप्रभु उसको भी रिजेक्ट कर दिया, कभी तो बेचा रुचि है कोई आएगा तब तुमको भेजन जाएगा और तुम खाओगे फिर भजन करोगे, तब तुम्हारा भजन में तुम्हारा विश्वास कहाँ, भगवान तुम्हारा विश्वास कहाँ है, इसलिए भी महाप्रभु ये चीज को यह भाषण करके यह चीज को भी महाप्रभु ने आदर नहीं किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी इसको भी समझ करके यह चीज भी रघुनाथ दास गोस्वामी त्याग देते हैं, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जा करके जो चीज को गैया भी नहीं खाते हैं, हाँ उसको भी धोधा कर किसी तरह से नमक दे करके उसको भी रघुनाथ दास गोस्वामी उससे भी ग्रहण करते हैं, फिर अपना भजन आदर्श को दर्शन कराते हैं, फिर उन्होंने जब महाप्रभु धीरे धीरे जब अंतर ध्यान होते इसलिए उनका जो कहते हैं साधारण साधन भूमिका है एक साधन, लेकिन उनका सिद्ध भूमिका तो कैसे राधा कुंड में आकर के कैसे दीप आरती और उस उत्कंठा को साथ में उनका जो भजन आदर्श जो राधा कुंड में और वहां पर जो तवावली रूप जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है और उन्होंने ललिता माधव नाटकों को पढ़ते हुए कृष्ण विरह में कैसे तड़फड़ाते हैं और रूप गोस्वामी के सिद्धांत के लिए कौन ग्रंथ दे करके उनको सांत्वन करते हैं और जो विलास पुष्पांजलि जो ग्रंथ को कैसे हुए राधा रानी के चरण में एक एक श्लोक को एक पुष्प रूप में कैसे अर्पण करते हुए भजन की जो दिव्य उत्कंठ और शिखर देह की जो साधन की वहां दिखाते हैं तबई वास्मी न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तम नयामि चरणानि दिग्ने, और त्रिसंध्या स्नान करते हुए जो उनका संख्या पूर्वक नाम गान नदी भी तालाब स्नान करते हुए जो भजन की जो अत्यंत दिव्य उत्कंठ है उन्होंने एक साधक जगत को एक बहुत बड़ी दिव्य पुस्तक गई हम बोलते हैं हमारा गुरु जी रूपानुगर है, बल्कि रूपानु तो भरजे है, लेकिन रूपानु को भरजे के भरजे कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जो अनर्पित चरित्र प्रेम देने के लिए आए थे। अगर हमको अनर्पित चरित्र प्रेम क्या है अगर यह चीज को समझना तो रघुनाथ दास गोस्वामी का बिलासपुर का पुष्पांजलि और इस कवावली में जितने सारे अष्टक यह चीज को हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम हमारे गौड़ीय वैष्णव में क्यों आए, महाप्रभु जगत में क्या देना चाहते हैं, पर यह चीज को समझ पाएंगे। आज इनका प्रभाव है कोई हम लोग को प्रभु कृपा
श्री रूप रघुनाथ पद जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास शिव के सुंदर कविराज गोस्वामी पा जिन्हें धामतपुर निवासी नवद्वीप सन्निगटे काटुआ सन्निगटे धामतपुर ग्रामे ते तहार आविर्भाव है। बारिते एक समय मीन केतन रामदास नित्यानंद प्रभु अनुग्रहित पात्र शिष्य तो श्री मेन केतन रामदास ग्रामे कृष्णदास कविराज गोस्वामी गृहते आसन सेखाने भक्तगण संगे निये नित्यानंद प्रभुर महिमा कीर्तन करें से सुने ताहार भाई कविराज गोस्वामी भ्राता अत्यंत विरोध करें एवं निंदा तिरस्कार करें সেই সমস্ত দেখেই তাহারা কীর্তন বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেলেন। বলে নিত্যানন্দ প্রভুর অপমান তিরস্কার কোনদিন সহ্য করা যাবে না, এমন সময়ে কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি দুঃখী হয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসলেন। রাত্রিকালে এই বৃক্ষ তলে শয়ন করেছেন এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভু তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। বললেন কি কৃষ্ণদাস তুমি আমার জন্যই আজকে গৃহ পরিত্যাগ করেছ, আমি আজ্ঞা দিচ্ছি তুমি বৃন্দাবনে যাও, বৃন্দাবনে গেলে তুমি সবকিছুই পাবে। এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা শ্রী কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি বৃন্দাবনে আছেন। তিনি লিখলেন কি যে নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় পাইল বৃন্দাবন দর্শন, যাহার কৃপায় পাইল গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন, পুরুষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ, মোর নাম এই প্রকারে নিত্যানন্দ প্রভুর করুণার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন এবং দিনহীন ভাবে ভক্তির পরাকাষ্ঠায় দিনহীন ভাব সেই প্রবল দৈন্য সহকারে তিনি নিজের ভাবে অভিব্যক্তি করেছেন। তাহার কৃপা করুণার প্রার্থী হয়ে শিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বা যিনি হলেন রসের ভাণ্ডারী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসের ভাণ্ডারী যতনে ধুইল প্রেম হেম কুম্ভ ভাই, তিনি হলেন রসের ভাণ্ডারী যত্ন পূর্বক স্বর্ণ কলসে প্রেম রত্নকে ভরে রাখলে। সংসারে বিশ্ব সংসারে আজকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ রূপে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত যাহা শ্রীমৎ ভাগবতের সারাংশ রূপে রসময় গ্রন্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং রাধা কৃষ্ণের মিলিত লীলা বিলাসকে বর্ণন করলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে রস চমৎকারিতার বর্ণন করলেন, আরো কি গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ রচনা করে অদ্ভুত কাব্য এবং রাধা কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলাকে বর্ণনা করে গেলেন। এমন তাহার সাহিত্য এমন কাব্য বিশ্ব সংসারে কোথাও আর দেখা যাবে না। অদ্ভুত কাব্য এবং পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রদর্শন করে তিনি এইভাবে রস চমৎকারিতার বর্ণন করেছেন এবং তিনি নিজেই গুরু মহারাজের কাছে শোনা তিনি ভাষণে বলতেন শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে যা রাজ চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস, তিনি সর্বক্ষণ রূপ রঘুনাথের আনুগত্য স্বীকার করে রূপ রঘুনাথের বাণী প্রচার করলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা তিনি চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করলেন। যখন বয়স অধিক হয়ে গিয়েছেন সেই সময় চৈতন্য চরিতামৃত লিখতে লিখতে মধ্যখণ্ডে গিয়ে তিনি অন্তলীলার সূত্রগুলি লিখে ফেললেন, বললেন কি আমি যদি না থাকি তাহলে পরবর্তীকালে কোন ভক্ত এই সূত্র ধরে রচনা করবে। শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদর শ্রী স্বরূপ দামোদরের নিকট তিনি যে যা কিছু শ্রবণ করেছেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভাব এবং গম্ভীরার ভাব সমূহকে তিনি শ্লোকাকারে কর্চা রূপে তৈরি করে রেখেছিলেন। সেই কর্চা ধরেই শিল কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণন করলেন। এইভাবে শিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে কাম গায়ত্রী ব্যাখ্যা লিখলেন। যে ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে যে কাম গায়ত্রীর টিকা করতে গিয়ে ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পর্যন্ত তিনি সংশয়াপন্ন হলেন যে আধা অক্ষরের পরিচয় কি করে হবে, কোথাও তিনি পাচ্ছেন না, তাহার জন্য তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করবেন সংকল্প নিয়েছেন। এমন সময় রাধারানী রাধা কুণ্ডে তিনি তাহাকে দর্শন দিলেন, দিয়ে বললেন বরাগম ভাষ্যত নামক গ্রন্থে আধা অক্ষরের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব কবিরাজ গোস্বামী পাদ আমার প্রিয় সখী তিনি যা লিখেছেন ঠিক লিখেছেন, তাহার লেখনীর মধ্যে বিন্দু মাত্র ভুল নাই, অতএব তাহার কথা অভ্রান্ত সত্য। ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই রাধারানীর কথাটি তিনি মন্ত্রার্থ দেবিকার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন, শ্রী কবিরাজ গোস্বামীর মহিমাকে দেখিয়েছেন। এইভাবে আমাদের গুরুবর্গ তাহারা শ্রী রঘুনাথের আনুগত্যে তাহার ভাব করুণা এবং সেই ভাব মাধুরীকে পাওয়ার জন্যই সর্বক্ষণ তাহার চরণ কমলে প্রয়াসী হন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন তিনি বৃন্দাবনে আসেন শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী সান্ত্বনা দিতে থাকেন, কিন্তু তিনি যে মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে আর যে শ্রী স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ আদি যত মহাপ্রভু পরিকারগণ ছিলেন তাহাদের জন্য যিনি অতিশয় কাতর প্রাণ পরিত্যাগ করবার জন্য তিনি সংকল্প গ্রহণ করে নিয়েছেন, গোস্বামীগণ তাহাকে সান্ত্বনা দেন এবং তিনি গিয়ে রাধা কুণ্ডে বাস করেন। সর্বক্ষণ কৃষ্ণ সর্বক্ষণ রাধারানীর জন্য তিনি বিলাপ করছেন, সেই জন্য তাহার গ্রন্থের নাম হলো বিলাপ কুসুমাঞ্জলি। হে বৃষভানুনন্দিনী শ্রী রাধিকে তোমার চরণ কমলে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাসিত্ব পদকে লাভ করতে পারি, তোমার সখিত্ব পদকে আমি নিত্য নমস্কার করি, আমার সেই সখিত্ব পদে প্রয়োজন নাই, তোমার চরণ কমলে দাসী হয়ে যেন সেবা লাভ করতে পারি। আর সেই দাসী বরদাসী সেই বরদাসীর পদকে তিনি অভিলাষা করলেন। হা দেবী কাকু ভার্গব হৃদয়াদ্য বাচা, হে দেবী বৃষভানুনন্দিনী শ্রী রাধিকে আমি গদগদ বাণী সহিত আর চন্দ্রবদ আরতি উৎকণ্ঠার সহিত তোমার চরণ কমলে এইটুকু প্রার্থনা করি যেন জন্মে জন্মে নিজ গণে গণনাম বিধেহি। হে বৃষভানুনন্দিনী শ্রী রাধিকে তোমার গণের মধ্যে আমাকে একজন গণনা করে নাও, আমি যেন তোমার হতে পারি। এইভাবে শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী যিনি নিরন্তর আরতি উৎকণ্ঠার সহিত রাধা কুণ্ডে ভজন করেছেন তাহার যে অপূর্ব মহিমা, রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা, তাহার বৈরাগ্য একদিকে পাষাণের রেখার নেয় অপরদিকে ভজনের পরাকাষ্ঠা, শ্রী শ্রীল রূপ গোস্বামীর বিচারধারা ভাবধারাতে যিনি স্নাত এবং সেই ভাবকে প্রকাশ করেছেন। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শিল জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী ঠাকুর বললেন কি আমরা হরির প্রচারে তাহাদের জন্ম জন্মান্তরে যেন তাহাদের চরণ ধুলি আমরা হতে পারি, এইটুকুই আমাদের জীবনে যেন অভিলাষা। জেগে উঠে এইভাবে গুরুবর্গ তাহাদের চরণে প্রার্থনা জানিয়েছেন। আজকে তাহার শিরোভাব তিথি, যে শিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী গিরিরাজ গোবর্ধন রাধা কুণ্ড ছেড়ে তিনি অন্যত্র কোথাও যাচ্ছেন না, বলছেন কে বকারী শ্রীকৃষ্ণ যদি তিনি আমাকে ডাকেন অন্যত্র যাওয়ার জন্য, আমি এই রাধা কুণ্ড ছেড়ে যাব না। এই রাধা কুণ্ড বাসে নিষ্ঠা ব্যক্ত করেছেন। এমন সময়ে শিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেই রাধা কুণ্ড গিরিরাজ গোবর্ধন ব্রজভূমির জন্য শিল রূপ গোস্বামীর বিয়োগে শিল সনাতন গোস্বামীর বিয়োগে তিনি বলছেন কি, শূন্যায়তম মহাগোষ্ঠম গিরীন্দ্র অজগরায়তে ব্যাঘ্রম তুণ্ডায়তে কুণ্ডম অদ্যাপি জীবাতু রৈতস্তমে, শূন্যায়তম মহাগোষ্ঠম আর এই রাধা কুণ্ড ব্যাঘ্রম তুণ্ডায়তে কুণ্ডম যেন বাঘের মুখের মত যেন আমাকে গিলে খাবে। আজকে শিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই প্রকারে শিল রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর প্রতি ভাবনা ব্যক্ত করেছে। তাহাদের প্রতি আর্থিক পুত্র সেই গুরুবর্গের চরণে আমরা প্রার্থনা জানাই। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীদীপ গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। এই বলেই আজকে আমি আমার
স্বামীকে সভা মে ভাগবত কে বক্তা বড়ে স্বর সে মধুর স্বর সে ভাগবত কা উচ্চারণ কর আর উসকি ऐसी ব্যাখ্যা করতে নিরঞ্জন ये और तो क्या रूप गोस्वामी भी मूर्छित हो जाते और लोग रोते आंसू आते नाक से लाला गिरता और रूप गोस्वामी कहते चुपचाप बैठने लोग समझते कि बैठे हैं देखो जैसे उनके शरीर में प्राण है कि नहीं रूई देख करके देखते और रूई चपाए एकदम जल जाता हाथ में खोखले आ जाते थोड़े से पानी में मछली पानी को गंदा कर देती है अर्थात पानी में नहीं उसी तरह से रूप गोस्वामी का हृदय महान अर्थात उसमें ये सब भाव गंभीर रूप से रह जाते ऊपर में प्रकट नहीं करते कार्य के चरण में भी हम लोग पुष्पांजलि दे रहे हैं আমাদের পান্ডাজি চতুর্বেদী যমুনা সাত আয়